सभी को प्यार भरा जय भीम,
जय भीम।
नमो बुद्धाय। कल हमने ये डायग्राम से यह जानने की कोशिश की कि कोई भी चीज अगर पैदा होती है तो उसके पीछे कोई एक ही कारण नहीं होता, अलग अलग कारण उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। तो यहां तनाव जो बताया गया है तो इसको हम दुख लेंगे, क्योंकि तनाव भी दुखमय है। तनाव जब होता है तो दुख ही पैदा हो जाता है, तो दुख का कारण फिर अलग अलग जो बातें हैं वो उसमें आ जाती है। तनाव में हमने ये बातें देखी है, तो दुख के भी कुछ अलग अलग कारण होते हैं जिसके कारण हम दुख सह लेते हैं, भुगतते हैं। तो दुख का मतलब है असमाधान, जिसको अनसेटिस्फैक्टरीनेस जिसको कहते हैं। तो कोई भी आदमी अगर दुखी हो तो हम सब दुखी है वैसे देखा जाए तो बुद्ध की शिक्षा या बुद्ध की शिक्षा जो प्रतीत्य समुत्पाद के माध्यम से हमें बताई गई है वो ये हमें सिखलाती है कि तनाव पैदा करने के लिए बहुत सारी बातों का होना जरूरी है। सिर्फ एक बात से तनाव पैदा नहीं होता, या दुख भी एक बात से पैदा नहीं होता। लेकिन दूसरी भी एक बात कही है कि समझो दबाव, काम का दबाव खत्म हो गया तो तनाव थोड़ा सा कम हो जाएगा। व्यायाम अगर हम करने लगेंगे तो तनाव कम हो जाएगा। हमारी थकावट नहीं रह गई तो तनाव कम हो जाएगा। इसका मतलब ये अगर नहीं है तो ये भी नहीं होगा, ये अगर नहीं है तो ये भी नहीं होगा, ये अगर है तो नहीं है तो ये भी नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि यह है तो यह है और यह नहीं है तो यह भी नहीं है। बड़ी सिंपल शिक्षा है बुद्ध की, यह बड़ी आसान ऐसी शिक्षा है कि यह है तो यह है और यह नहीं है तो यह नहीं है। तो यहां दुख का कारण खास करके तृष्णा कहा गया। दुख का कारण क्या कहा गया है? तृष्णा। और इस तृष्णा को जब हम देखते हैं तो तृष्णा तीन प्रकार की खास करके हम देखते हैं, काम तृष्णा, भव तृष्णा और कौन सी? विभव तृष्णा। तो लेकिन बुद्ध कहते हैं कि दुख का कारण केवल तृष्णा है ऐसा नहीं है। हम उन्होंने भी बताया है कि दुख का कारण तृष्णा है, लेकिन वे ही बताते हैं, बुद्ध ही बताते हैं कि केवल तृष्णा यह दुख का कारण नहीं हो सकता, उसके पीछे और भी कुछ कारण हो सकते हैं जिसके कारण हम दुख भुगतते हैं। भंते संघर्ष जी ने लिविंग विद अवेयरनेस में तृष्णा के बारे में अच्छी बातें कही है। तो भंते जी क्या कहते हैं? भंते जी कहते हैं कि जब हम तृष्णा का अनुभव करते हैं तब हमें कुछ भी और कोई भी चीज चाहिए ऐसा लगता है, यानी कोई भी चीज हमें चाहिए यह तृष्णा की शुरुआत है। तो हमें क्या क्या चाहिए तृष्णा बढ़ाने के लिए या तृष्णा उत्पन्न करने के लिए क्या क्या चाहिए? तो भंते जी कहते हैं कि
हमें लगता है कि मैं कुछ पढ़ूं, किसी के साथ बात करूं, किसी के साथ खाने में शामिल हो जाऊं, ये उसके मन में तृष्णा पैदा हो रही है। और जब आदमी इस तृष्णा के जकड़ में आ जाता है, तब वे भंते जी ऐसा कहते हैं कि ये बातें पूरी तरह से पूर्ण नहीं होती, वह संतुष्ट नहीं होता। इन जो जो कुछ बातें उसे चाहिए वो अगर नहीं मिलती तो वह संतुष्ट नहीं होता। तो फिर उसको ऐसा लगता है कि ये तीन बातों से मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। कौन सी बातें हैं? एक तो सेक्स, जिसको कहते हैं लैंगिकता। दूसरी बात है पावर, जिसको हम सत्ता कहते हैं। और तीसरी बात है पैसा, मनी। तो ये तीन बातें अगर मुझ में समा गई या मैं उससे परिपूर्ण हो गया तो मैं सुखी हो जाऊंगा, दुख से मुक्त हो जाऊंगा, ऐसा उसे लगता है। लेकिन ये जब बातें हैं तो उसको लगता है कि मैं सुख की ओर बढ़ जाऊंगा। ये तीन बातें जब मेरी पूरी हो जाएगी तो सुख की ओर बढ़ जाऊंगा। इतना ही तो भंते जी कहते हैं कि ध्यान में भी हमारी तृष्णा बढ़ती है। हमें लगता है कि मैं ध्यान कर रहा हूं लेकिन ध्यान की अवस्थाएं अभी प्राप्त नहीं हुई, तो मुझे ऐसी अवस्थाओं तक पहुंचना है। ये भी उसकी एक तरह से तृष्णा है। और उस तृष्णा के लिए फिर वो तुरंत प्रयास करने लगता है, और जब प्रयास करने लगता है तो ध्यान उसका नहीं लगता, क्योंकि वो क्या कर रहा है कि मुझे कुछ अवस्थाएं प्राप्त करनी है, इसलिए वो ध्यान कर रहा है। जब ध्यान आदमी किसी चीज को पाने के लिए करने की कोशिश करता है तो वो चीज बाजू में रह जाती है और दूसरी ही कुछ बातें आ जाती है। तो इस तरह से वो ध्यान की अवस्थाओं को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है, लेकिन बाद में वो दुखी हो जाता है क्योंकि कोई ध्यान की अवस्था उसको दिखाई नहीं देती। बाद में फिर वो उतावला बन जाता है कि क्या मैं इतने घंटे बैठ रहा हूं, ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, लेकिन मेरा ध्यान तो नहीं लग रहा। मुझे तो लगता था कि मेरा ध्यान अच्छा हो रहा है और कुछ अवस्थाएं मुझे प्राप्त हो जाएगी, लेकिन ये उतावलेपन में फिर उसका और ध्यान खराब हो जाता है, ध्यान लगता ही नहीं। भंते जी कहते हैं कि कभी कभी हमें लगता है कि यह व्यक्ति है उसके साथ में अगर रहूं तो बड़ा अच्छा होगा, यानी साथ में रहने की तृष्णा उसके अंदर बढ़ती है। उसको कभी कभी ऐसा लगता है कि दूसरे लोगों के कारण मैं सुखी बन जाऊंगा, तो दूसरे लोगों के पास वो जाने की कोशिश करता है, दूसरे लोगों को मिलने की कोशिश करता है और खुद को भूल जाता है। खुद को भूल जाता है, दूसरे लोगों को मिलने की कोशिश करता है, तो फिर वो क्या हो जाता है, सुख पाने की कोशिश करता है लेकिन वो दुखी पा लेता है। तो इसमें भंती जी कहते हैं कि यहां एक गैप बढ़ जाती है, एक दरार पैदा हो जाती है, सुख में और दुख में एक दरार पैदा हो गई है। तृष्णा का विषय कौन सा भी हो उसे तृष्णा ही कहते हैं और कुछ नहीं कहते हैं। अलग अलग, जैसे उन्होंने बताया कि अलग अलग प्रकार है तृष्णा के, एक ही प्रकार है तृष्णा का, ऐसा नहीं है। तो किसी के साथ आसक्ति बढ़ाना यह भी तृष्णा को बढ़ाना है। जब हम आसक्ति बढ़ाते हैं तो तृष्णा भी बढ़ जाती है। तो ये भंते जी कहते हैं कि यह चक्रव्यूह है, एक विशेष सर्कल है, तो इसके अंदर हम घूमते रहते हैं इसके अंदर, और इस सर्कल को, इस विशेष सर्कल को हमें तोड़ना है, इस चक्रव्यूह के बाहर हमें निकलना है, बाहर पड़ना है। तो फिर हम क्या करते हैं, तो हमारे अंदर जो तृष्णा है, वीर्य है, लेकिन भागदौड़ करने वाला वीर्य है, वो कुशल कार्य करने वाला वीर्य नहीं है, तो भागदौड़ करने वाला वीर्य है ये। और उसके अंदर जो खालीपन उसे महसूस हो रहा है, ये दो तीन बातें जब हम देखते हैं तो उसका अनुभव उसे समाधान नहीं देता, उसे संतुष्टि नहीं प्राप्त कर देता, और उससे छुटकारा मिले या न मिले इसके लिए वो सोचते रहता है। तो इस तरह से भंते जी ने तृष्णा के बारे में बहुत कुछ कहा है, लेकिन तृष्णा यदि हमारी खत्म हो गई तो बुद्ध ने एक बड़ी अच्छी एक गाथा कही है, और वो गाथा ऐसी है, धम्मपद में ये गाथा आई है 154 नंबर की ये गाथा है। तो तृष्णा को बुद्ध ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया है, और फिर अभी बुद्ध क्या कह रहे हैं, गहकारक दिट्ठोसी पुनः गेहं न काहसी सब्बाते फासुका भग्गा गहकूटं विसंखितं विसंखारगतं चित्तं तन्हानं खयं मज्जगा। इसका मतलब यह है कि हे गृहकारक, गृहकारक यानी तृष्णा को गृहकारक कहा है, हे गृहकारक मैंने अंततः तुम्हें देख ही लिया है, अब तुम पुनः कारागार नहीं बना सकोगे, सभी कड़ियां टूट गई है, शिखर भी ध्वस्त हो गया है, मेरा चित्त संस्कार रहित हो चुका है, तृष्णा क्षय यानी अर्हत्व अब मैंने प्राप्त किया है, मुझे प्राप्त हो चुका है। तो जब तृष्णा पूरी खत्म हो गई तो ही आदमी फिर अलग अलग बातों से दूर हो जाता है। तो ये जो शिक्षा है भगवान बुद्ध की, जो जो हम देख रहे हैं प्रतित्य समुत्पाद की, तो उसमें प्रतित्य और समुत्पाद ये दो शब्द है। प्रतित्य यानी उत्पन्न होकर बढ़ना, बढ़कर नष्ट होना, उत्पन्न होना, उत्पन्न होकर बढ़ना, बढ़कर नष्ट होना, और नष्ट होने से फिर समुत्पाद पैदा होता है। नष्ट होने से समुत्पाद पैदा होता है, इसका मतलब दूसरे चित्त का उसी समय उत्पन्न होना। समुत्पाद यानि एक नष्ट होना और दूसरे उसी समय दूसरे चित्त का निर्माण होना, उसको समुत्पाद कहा गया है। और इसी को बुद्ध ने कार्य कारण भाव कहा है, कार्य कारण न्याय कहा है, या पटिच्च समुत्पाद ऐसा कहा है। अभी थोड़ा सा एक कुछ उदाहरण लेकर हम ये प्रतित्य समुत्पाद क्या है उसको देखने की कोशिश करेंगे। तो ये पटिच्च समुत्पाद या प्रतित्य समुत्पाद या कार्य कारण भाव, ये निसर्ग में कैसे लागू होता है? निसर्ग में हम देखते हैं कि आकाश में बादल होने के कारण वर्षा होती है, ठीक है ना? आकाश में बादल होने के कारण वर्षा होती है, वर्षा के कारण रास्ते में फिसलन पैदा होती है, वर्षा होने के कारण रास्ते में फिसलन पैदा होती है, रास्ते में फिसलन होने के कारण मनुष्य गिर जाता है, और मनुष्य के गिरने से उसे चोट लगती है, उसे चोट लगती है। एक उदाहरण दिया गया। तो यहां वर्षा आकाश में बादल आने पर निर्भर है। वर्षा हुई है, लेकिन वर्षा क्यों हुई है? आकाश में बादल आने के ऊपर वह निर्भर है। रास्ते में फिसलन, यह वर्षा पर निर्भर है। मनुष्य का गिरना, यह रास्ते में फिसलन पर निर्भर है। और मनुष्य को चोट लगना, उसके नीचे गिरने पर निर्भर है। तो ये दो बातें हमने देखी कि एक के ऊपर वो अवलंबित है या आधारित है, निर्भर है, और दूसरी बार देखा कि ये नहीं है तो वो भी नहीं है, और या इसके कारण ऐसा हुआ है। तो आगे चल के इसी उदाहरण को हम लेते हैं कि यदि आकाश में बादल नहीं होते तो वर्षा नहीं होती, फिर रास्ते में फिसलन नहीं होती, आदमी नीचे नहीं गिर जाता, और आदमी नीचे नहीं गिर जाता तो आदमी को चोट नहीं लगती। यानी ये सभी बातें अगर नहीं हैं तो फिर पहले की बातें जो गिरना है, वर्षा होना है वगैरह वगैरह, वो होती ही नहीं। तो यह यहां यह सिद्धांत, बुद्ध का सिद्धांत है, वो बहुत ही आसान तरीके से हम समझ सकते हैं। इसमें हुआ क्या है कि एक घटना दूसरे घटना पर निर्भर है, और एक घटना अगर नहीं घटी तो दूसरी घटना नहीं घटेगी। जो घटना घटी है वो किस पर निर्भर है? किसी और घटना पर निर्भर है। लेकिन ये घटना ही नहीं हुई तो किसी पर निर्भर रहना भी जरूरी नहीं है। तो यहां कारण और परम परिणाम, ये दो जो है, जिसको कार्य कारण भाव ऐसा भी कहा है, कारण है और परिणाम है। तो कोई भी चीज अपने आप में उत्पन्न नहीं होती, जब तक वह इसके पहले की चीज पर निर्भर नहीं है तब तक वह चीज उत्पन्न नहीं होती। इसका मतलब एक चीज उत्पन्न होने के लिए उसके पहले कोई तो भी चीज उत्पन्न हुई हुई होनी चाहिए, तभी दूसरी चीज जो है वो उत्पन्न हो सकती है। अभी इसके बारे में जो साइंस, ये आधुनिक साइंस है, वो क्या कहता है? आधुनिक साइंस में जैसे बॉटनी हम देखते हैं, वनस्पति शास्त्र, वनस्पति शास्त्र भी यही कहता है कि पेड़ को अच्छी तरह से बढ़ना है, पेड़ को अच्छी तरह से अगर बढ़ना है तो उसके लिए क्या क्या चाहिए आप बताएं? उसके लिए पानी, सूर्य प्रकाश, खाद, ये सब बातें जरूरी है, तब वो पेड़ क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। फिजिक्स ने क्या कहा है, पदार्थ विज्ञान जिसको कहते हैं, उसने क्या कहा है? पदार्थ विज्ञान में यह कहा है कि इंजन की हलचल उसमें होने वाली भाप की शक्ति पर निर्भर है। इंजन की हलचल जो है, रेलवे का इंजन हम देखते हैं, पहले भाप पर चलता था, कोयला, अग्नि, भाप, तो जब भाप कैसे पैदा होती है, तो भाप पानी और अग्नि पर निर्भर है। अगर भाप नहीं है तो इंजन नहीं चलेगा। तो भाप कैसे बनती है, तो पानी अगर, अग्नि अगर नहीं हो तो भाप नहीं बनेगी। तो ये इंजन चलने का कारण क्या है, तो भाप है, लेकिन भाप का भी और कोई कारण है, वो अगर कारण वहां मौजूद नहीं है तो भाप पैदा नहीं होगी, और भाप पैदा नहीं होगी तो इंजन भी नहीं चलेगा। इस प्रकार जगत में छोटी सी छोटी भी कोई चीज है तो ये निसर्ग का नियम है कि उसको कुछ ना कुछ कारण चाहिए, उसको चलाने के लिए या चलने के लिए कुछ ना कुछ कारण चाहिए, और यह कारण बुद्ध ने बताया। और यह सिद्धांत बुद्ध का जो है, इसके पहले कोई भी गुरु ने इसकी खोज नहीं की है, ये बुद्ध पहले ही गुरु है कि जिन्होंने इस सिद्धांत को खोज कर निकाला है। अभी हम अपना यहां का जो हाल में चल रहा है वो उदाहरण लेंगे कि अभी जैसे अभी ज्ञान ध्वज ने कहा कि हम गर्मी से पसीना पसीना हो रहे थे जब हम आए तो, और यहाँ चंद्रपुर साइड से भी कुछ लोग आए हैं, हम हमेशा देखते हैं कि टेम्परेचर क्या है चंद्रपुर में, बाप रे 45-46 डिग्री। और पूना के लोग एकदम क्या हो रहे हैं, पहली बार 41 डिग्री चल रहा है पूना में, तो वो अरे बाप रे क्या गर्मी है। अभी यहां से जाए तो जाए कहां और तो कोई जगह नहीं है, दूसरी जगह देखते हैं तो टेम्परेचर और ज्यादा ही ज्यादा है। तो ये टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है, इसका अगर कारण हम ढूंढते हैं तो पेड़ों की कटाई बहुत हो गई है, तो जमीन में जो क्या कहते हैं मॉइस्चर होना चाहिए, आर्द्रता होनी चाहिए, वो आर्द्रता नहीं है, सीमेंट कंक्रीट के जंगल बढ़ गए हैं, जिधर उधर सीमेंट कंक्रीट, और वो धूप के कारण वो बहुत गर्म होता है, और बहुत गर्म होने के बाद नींद भी नहीं आती। हम गुलबर्गा में गए तो रात रात भर नींद ही नहीं आती थी, कितने भी पूरे फास्ट 5-6 नंबर जो कुछ है फैन का ओ उतना बढ़ाते थे तो भी नींद नहीं आती थी। तो ये गर्मी क्यों बढ़ रही है, तो उसके कारण ये अलग अलग है कि पेड़ों की कटाई हो गई है, कोई पेड़ बोने का काम नहीं करते, खाली फोटो निकालने के लिए कार्यक्रम चलाते हैं, अरे इतने 1,00,000 पौधे हमने क्या किया है लगाए हैं, 1,00,000 कहाँ हुआ, 10-15 ही रहते वो फोटो के निकालते समय और बाकी के बाजू में ही रखे जाते हैं, वो वापस चले जाते होंगे नर्सरी में। तो ये क्यों हो रहा है, तो ये इसका कारण ये है। तो ग्लोबल वार्मिंग आज जो बहुत ही जटिल ऐसा सवाल पैदा हो गया है ग्लोबल वार्मिंग का, तो ये इसके कारण ही है। तो वार्मिंग के कारण क्या हो रहा है, अभी बर्फ भी पिघल रही है, बर्फ तो पिघलती थी धूप काले में, बर्फ पिघलती थी, बाढ़ आती थी नदियों में, लेकिन अभी ज्यादा बर्फ पिघल रही है, और जो पहाड़ है उस पर बर्फ अभी कम हो रही है क्योंकि पिघलना ज्यादा शुरू हो गया है, बाढ़ भी ज्यादा आएगी, और बाढ़ ज्यादा आएगी तो फिर नुकसान हो जाएगा, लोगों का नुकसान हो जाएगा, खेतों का नुकसान हो जाएगा। इस तरह से ये सब बातें एक के ऊपर एक निर्भर है। यदि हम पेड़ अगर ज्यादा लगाते तो बारिश ज्यादा होती तो ये गर्मी ज्यादा नहीं होती, तो इस तरह से ये बातें एक के ऊपर एक निर्भर है, ये हम यहां देख सकते हैं। तो ये जो घटनाएं घटती है इसकी एक श्रृंखला बनी हुई है, कुछ कड़ियां बनी हुई है, और ये निरंतर लगातार ये चल रही है, इसमें रुकावट नहीं है। अगर रुकावट होती तो और प्रॉब्लम खड़े हो जाते। कुछ ना कुछ हद तक बारिश हो रही है, कुछ ना कुछ हद तक पेड़ लगाए जा रहे हैं, कुछ ना कुछ हद तक और भी कुछ किया जा रहा है, इसलिए उसका संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन संतुलन उस असंतुलन में बढ़ रहा है, संतुलन नहीं हो रहा है। यदि संतुलन होता तो ये सब बातें अभी हम महसूस कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, वो नहीं होती। अभी कुछ लोगों ने अपना दिमाग और बढ़ाया और उन्होंने कहा कि ये सब बातें आप बोल रहे हैं, लेकिन ये सब बातें जो घट रही है उसका पहला कारण क्या है, यानी मुर्गी पहली या अंडा पहला। तो ऐसे कुछ रहते हैं अपने अंदर लोग रहते हैं, उनको ये सिलसिला जारी रखना होता है, तो इसलिए कुछ सवाल खड़ा कर देते हैं। तो यहां लोगों ने पूछा है कि पहला कारण क्या है, आप बोल रहे हैं ये कारण से ये हो रहा है, ये कारण से वो हो रहा है, लेकिन पहला कारण कौन सा है और ये कब खत्म होगा, ऐसा भी सवाल किया है। ये कारण तो है लेकिन ये सिलसिला कब खत्म होगा, ये दोनों भी प्रश्न है, ये जवाब दे है क्या, इसका जवाब नहीं दे सकते हम। लेकिन साइंस ने इसको खोज करने की कोशिश की है, पहला कारण क्या है, उसका परिणाम क्या है, उसका अंत कब हो जाएगा, ये साइंस ने खोज करने की कोशिश की है, लेकिन साइंस इसमें नाकामयाब हो गया है। साइंस को ये पता नहीं चला अभी कि इसका पहला कारण क्या है और ये कब खत्म होने वाला है। तो साइंस भी अगर यहां हतबल है, वो भी उसका कारण ढूंढ नहीं सकता, तो फिर यहां दूसरी एक बात उभर आई है, वो है सुपरस्टिशन, अंधश्रद्धा उभर आई है, क्योंकि उनको पहला कारण ढूंढना है, इसका कारण क्या है वो ढूंढना है, तो सुपरस्टिशन के माध्यम से, अंधश्रद्धा के माध्यम से फिर वो कारण ढूंढ रहे हैं। तो आदि मानव जो थे, आदि मानव ने निसर्ग में घटने वाली जो चमत्कार दिखाने वाली जो बातें हैं उनको भी बड़ी उत्सुकता पैदा होगी कि ये निसर्ग में ये जो बातें घट रही है वो क्यों घट रही है, इसका कारण क्या है, वो भी आदि मानव होते हुए भी वो भी ढूंढना चाहते थे इसका कारण क्या है। तो फिर उन्होंने ऐसा कहा कि ये जो घट रहा है, जो बातें घट रही है, इसमें कोई देव देवताओं का हाथ जरूर होगा, देवी देवताएं जब तक ये नहीं रहेगी तो ये कैसे घटेगी। तो उन्होंने फिर वहां चले गए वो देवी देवताओं की तरफ, और उन्होंने फिर इसका स्पष्टीकरण करने की कोशिश की है, प्रयास किया है। अभी आदि मानव ने हवा बहती है, हवा क्यों बहती है इसका कारण ढूंढ के निकाला उन्होंने, अभी वो तो इतने एडवांस नहीं थे, आदि मानव थे, फिर भी उन्होंने कारण ढूंढ के निकाला कि ये हवा क्यों बहती है। तो उन्होंने ऐसा कारण ढूंढ के निकाला कि अभी कोई देवता की शादी हो रही है और बारात चल रही है और ये बारात के कारण हवा बह रही है, तो ये कारण उन्होंने ढूंढ के निकाला, लोगों को बड़ा अच्छा लगा, रहा हवा का कारण मिल गया, हवा क्यों बहती है इसका कारण मिल गया। वास्तव में इसका मूल कारण है प्रतीत समुत्पाद, इसका मूल कारण हवा क्यों बहती है इसका मूल कारण है प्रतीत समुत्पाद, और बुद्ध ने इसका कारण ढूंढ निकाला है इसका उन्होंने कहा है कि हवा की हलचल वातावरण के दबाव में कम ज्यादा फर्क होने के कारण महसूस होती है, यानी हवा क्यों बहती है तो वातावरण में कम ज्यादा दबाव जो पैदा होता है उसके कारण हवा बहती है, यह कारण बुद्ध ने खोज के निकाला, लेकिन आदि मानव ने क्या खोज के निकाला था, शादी की बारात चल रही है इसलिए हवा बह रही है, अगर देवता की शादी नहीं होती तो हवा नहीं बहती। तो इस तरह से अंधश्रद्धा फिर फैलती गई, बढ़ती गई, और जब अंधश्रद्धा बढ़ती है तो उसका फिर अंत नहीं होता, एक के बाद एक लोग अपनी अपनी कथाएं रचते हैं और फिर ये बात आगे आगे बढ़ती है, उसमें कोई भी रुकावट पैदा नहीं होती। लेकिन प्रतीत समुत्पाद पहला कारण कौन सा है, इसकी खोज नहीं करता। इसका मतलब बुद्ध ने पहला कारण क्या है इसकी खोज नहीं की है। बुद्ध ने कहा है कि इसका पहला कारण अगर हम ढूंढते रहे तो इस प्रक्रिया को हम क्या करेंगे, पूरी तरह से रोक देंगे। ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम पूरी तरह से रोक देते हैं जब हम इसका पहला कारण ढूंढते हैं। तो प्रतीत समुत्पाद ये कहता है कि दो घटनाएं घटती है तो एक दूसरे के बिल्कुल अलग नहीं होती, एक दूसरे से बिल्कुल अलग है ऐसा हमें समझना नहीं चाहिए। दो घटनाएं घटी है, क्यों कि एक के ऊपर दूसरी घटना निर्भर है, इसलिए वो घटना घटी है। इसलिए एक घटना बिल्कुल अलग है और दूसरी घटना बिल्कुल अलग है ऐसा अगर हम कहते हैं तो यहां प्रतीत समुत्पाद कुछ काम नहीं कर सकता। तो बुद्ध ने यह भी एक सिद्धांत रखा है कि कोई भी घटना, एक घटना बिल्कुल अलग है, अकेली है ऐसा हम नहीं कह सकते। कोई एक घटना अलग है, अकेली है ऐसा हम नहीं कह सकते। तो केवल कारण भी अपने आप में अकेला नहीं है, हम ढूंढ रहे हैं कारण, लेकिन कारण भी अकेला नहीं है। तभी कारण को बुद्ध ने आगे बढ़ाया है, एक उदाहरण दिया है कि घड़ा बनता है, मिट्टी का घड़ा बनता है, तो मिट्टी यह घड़े का क्या है, मिट्टी यह घड़े का, घड़ा बनने का कारण है। लेकिन केवल मिट्टी से घड़ा नहीं बनता, केवल मिट्टी से घड़ा नहीं बनता। यदि वहां पानी नहीं है, चक्का नहीं है, कुम्हार नहीं है, कुम्हार की घड़ा बनाने की इच्छा नहीं है, सब कुछ है लेकिन उसकी इच्छा नहीं है, तो घड़ा नहीं बन सकता। तो ये सब बातें घड़ा बनाने के लिए जरूरी है, अनिवार्य है। उसमें एक की भी अगर कमी हो तो वह घड़ा बन नहीं सकता। तो उसमें एक ही कारण है घड़ा बनने के लिए, वो पर्याप्त है ऐसा हम इस नहीं कह सकते। लेकिन कहते समय हम क्या कहते हैं कि घड़ा किससे बनता है, मिट्टी से बनता है, ऐसा कहने के लिए हम कहते हैं। बौद्धिकता के तौर पर हम उसको मान लेते हैं कि ये सब बातें उसमें सम्मिलित है इसलिए घड़ा बनता है, लेकिन मिट्टी एक ही कारण हम देते हैं कि उसके कारण ये घड़ा बन गया है। तो यहां कोई भी चीज जो उत्पन्न होती है उस पर अगर कार्य कारण भाव नहीं है, कार्य कारण भाव का सिद्धांत यह नहीं है, तो कोई भी चीज वहां उत्पन्न नहीं हो सकती। बुद्ध ने और एक उदाहरण दिया है कि मृत्यु क्यों होता है, तो लोग कहते हैं कि हार्ट अटैक से मृत्यु हो गया या कैंसर से मृत्यु हो गया, ठीक है, बिल्कुल सही है, लेकिन केवल कैंसर से या हार्ट अटैक से ही मृत्यु हुआ ऐसा हम नहीं कह सकते कि उसको गुटखा खाने की आदत होगी, उसको दारू पीने की आदत होगी, उसको और भी कोई बुरी आदतें होगी, तो इन बुरी आदतों के कारण उसका मृत्यु हो गया है, लेकिन हम डॉक्टर भी कहते हैं कि क्या हो गया, हार्ट अटैक आ गया, बाकी के कारणों को वो नहीं ढूंढता। लेकिन हम ये कार्य कारण भाव अगर देखते हैं तो हम ऐसा ही नहीं बोल सकते कि हार्ट अटैक से ही इसकी मृत्यु हो गई है, तो मृत्यु के और भी कुछ कारण हो सकते हैं। कभी कभी ये पैरालिसिस जो होता है तो लोग कहते हैं कि बीपी बढ़ गया तो उसकी नसें जो है वो बारीक बन गई, बढ़ने से वो जो खून का प्रवाह है वो ठीक तरह से नहीं बढ़ता, तो प्रेशर बढ़ता है नसों पर और फिर वो क्या हो जाता है, पैरालिसिस होता है। लेकिन पैरालिसिस और भी कोई चीज उसके उसके कारण होंगे कि पैरालिसिस हो गया। यदि आप पंखे के बहुत जोर से पंखा लगाया और पंखे के नीचे अगर आप सोते रहेंगे तो सुबह में उठेंगे तो आपका हाथ पूरा नम हो जाएगा, तो ये भी कारण हो सकता है आपके पैरालिसिस का। लेकिन हम बोलते हैं कि नहीं, बीपी बढ़ गया इसलिए पैरालिसिस हो गया। तो पैरालिसिस के और भी कुछ कारण हो सकते हैं लेकिन हम एक ही कारण लेके बैठते हैं। अभी हम तृष्णा की बात कर रहे थे तो तृष्णा होने से दुख की उत्पत्ति होती है और तृष्णा नहीं होने से दुख की उत्पत्ति नहीं होती। लेकिन एक बात यहां ध्यान में रखनी है कि जो अरहंत बन गए हैं, जो जिनको बुद्धत्व की प्राप्ति हुई है, उनको शारीरिक दुख होता है लेकिन मानसिक और भावनिक दुख से वो परे रहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि दुख होता है, जो निर्वाण पदस्थ लोग हैं या महान गुरु है, संत है, तो उनको शारीरिक दुख होता है लेकिन मानसिक दुख से वो परे होते हैं या भावनिक दुख से वो परे होते हैं, क्योंकि उनमें से तृष्णा खत्म हो गई है। ये मानसिक दुख और भावनिक दुख किसके कारण पैदा होता है, तो तृष्णा के कारण पैदा होता है। लेकिन शारीरिक दुख जो है ये बुद्धत्व प्राप्ति वाला आदमी हो या बिना बुद्धत्व प्राप्ति वाला आदमी हो, किसी को भी वो शारीरिक दुख हो सकता है। लेकिन उसमें भी ये बताया गया है कि बुद्धत्व प्राप्त करने वाली व्यक्ति जो है वह उस दुख को उपेक्षा भाव से देखती है, हम उपेक्षा भाव से नहीं देखते। हम कहारते हैं ये वो बॉडी इधर उधर हिलाते रहते हैं तो हमारा दुख जो है वो हम सह नहीं सकते, लेकिन ये जो लोग है वो दुख सह भी लेते हैं और क्योंकि उस दुख को वो क्या करते हैं, उपेक्षा भाव से देखते हैं, इक्वानिमिटी उनमें बढ़ी हुई होती है। भिक्षु जगदीश काश्यप जो भंते जी के एक गुरु है, भंते जी उनके बारे में कहते हैं कि ये ब्राह्मण पंडित थे पहले और उनको वेदों का पूरा ज्ञान था। ऐसा भी कहते हैं कि वेद सीधी तरह से भी वो पढ़ सकते थे और उल्टी तरह से भी वो पढ़ सकते थे, यानी उतने वो विद्वान थे, ज्ञानी थे। लेकिन उन्होंने पाली ग्रंथ में एक पैसेज पढ़ा और वो पैसेज ऐसा है पाली ग्रंथ में, एक संदर्भ ऐसा आया है कि बुद्ध अपने शिष्यों को शिक्षा प्रदान कर रहे थे और ज्यादा समय तक उपदेश देने के कारण बुद्ध के पीठ में दर्द होना शुरू हो गया। यानी बुद्ध के पीठ को भी दर्द होने लगा है। वहां सारिपुत्र बाजू में उपस्थित थे तो सारिपुत्र को बुद्ध ने कहा कि सारिपुत्र तुम यह शिक्षा को आगे बढ़ाओ, ये लोगों को उपदेश करो, मैं थोड़ी देर लेट जाता हूं। ये जो पैसेज है ये जगदीश काश्यप ने जब पढ़ा तब उनको लगा कि अरे ये वेद में मैं ऐसा भी पढ़ता हूं, इधर से भी पढ़ता हूं, उधर से भी, लेकिन इसमें कुछ ऐसा कभी कोई देवता उसकी पीठ में दर्द हो गया ऐसा मैं कभी सुना ही नहीं। किसी देवता को कभी पीठ में या पांव में चोट आ गई ऐसा कोई 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 ऐसा संदर्भ कहीं दिखाई नहीं दिया। तो यहां जगदीश काश्यप बदल गए हैं। जगदीश काश्यप ने कहा कि यही धर्म है, यही शिक्षा है, क्योंकि बुद्ध भी एक सामान्य व्यक्ति है और हम भी एक सामान्य व्यक्ति है, तो उनको हमें जैसे दर्द होता है वैसे उनके भी पीठ को दर्द होता है। ये जब उन्होंने जाना तब वे वहां से बुद्धिस्ट बन गए। यानी जगदीश काश्यप को एक टर्निंग पॉइंट मिल गया और वहां से वो बुद्धिस्ट बन गए। तो यहां ये शारीरिक दुख बुद्ध को भी है लेकिन मानसिक और भावनिक दुख ये मगर बुद्ध को नहीं था। इसलिए बुद्ध कहते हैं एक बार आनंद को कि अभी मैं बूढ़ा हो गया हूं। आपको भी पता है कि उन्होंने वो बुलक कार्ड का उदाहरण दिया है, मैं बैलगाड़ी जैसा हूं, इधर उधर रिपेयरिंग चल रहा है मेरे बैलगाड़ी का और मैं चला रहा हूं, लेकिन ये शरीर की बात है, लेकिन मेरा मन जो है बिल्कुल अभी भी कैसा है, प्रफुल्लित है, उत्साही है, ताजा ताजा है। तो इससे हम ये देख सकते हैं कि दुख होता है, बुद्ध को भी दुख होता है, लेकिन उस दुख को वो उपेक्षा भाव से देखते हैं और उसको सहने की उनमें ताकत होती है। दूसरा एक उदाहरण हम लेंगे कि देवदत्त ने जब वो पहाड़ से पत्थर फेंका और उसका एक छोटा सा टुकड़ा जो है बुद्ध के पैर को लगा और उसमें जख्म हो गई, रुद्रकूट से वो पत्थर फेंका गया था तो पैर को जख्म हो गई और जीवक आ गए और जीवक ने मलम पट्टी की, उसको मरहम लगाया, ये सब हो गया, लेकिन वो जो मरहम पट्टी लगाई हुई थी उसका कुछ समय था तो इतने घंटे तक ही वो मरहम पट्टी रखनी है, बाद में वो निकालनी है। लेकिन ये फर्स्ट एड करने के बाद जीवक दूसरे पेशेंट को देखने के लिए दूर गए थे और उनको आने में समय हो गया। ये समय जितने समय तक वो पट्टी रखनी चाहिए थी वो समय गुजर गया, ज्यादा हो गया। तो जीवक दौड़ते भागते हुए आ गए कि अरे वो पट्टी निकालनी है, तो बुद्ध ने वो पट्टी निकाल दी थी पहले ही, तो बड़े वो चौंक गए कि अरे आपको कैसे पता चला कि इस समय तक, मैंने तो नहीं बताया था आपको कि इतने घंटे तक वो रखनी है और बाद में निकालनी है। तो बुद्ध ने बोला कि मैं सबका दिल में क्या है वो सब जानता हूं, तेरे मन में क्या तेरे मन में क्या चल रहा था, क्या तुझे चाहिए वो मैं जानता था, लेकिन तू अभी इतने घंटे तक वो रखनी है वो मुझे पता चला, मैंने निकाल दी वो। तो यहां बुद्ध ने जो वो दर्द है, चोट का दर्द है, वो सह लिया था और ये जान भी ले, उनको वो जान भी गए थे कि ये पट्टी निकालनी है, इसका समय भी हो गया है और मैं अभी तंदुरुस्त हो गया हूं, ये भी उनको पता हो गया था। लेकिन ये सब बुद्ध की बातें चल रही है, अब हमारी बातें हम हमारी ओर जब आएंगे तो ऐसा हमारे अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। ये क्यों नहीं होता हमारे अंदर, तो ये मेरा सवाल है अभी डिस्कशन के लिए कि बुद्ध को दर्द नहीं होता, अगर दर्द होता है तो भी वो उपेक्षा भाव से देखते हैं, तो हम दर्द में क्या क्या करते हैं, जब ऐसी कुछ हो बातें घटती है तो हम क्या करते हैं।
हाँ
जी,
चिंतों को दर्द नहीं,
दर्द दर्द होता है लेकिन वो यानी शारीरिक दर्द है वो सिर्फ। तो इसका मतलब ये है कि हमारी उपेक्षा भावना कब बढ़ेगी, यानी दर्द को हम उस उपेक्षा भाव से हमें देखना है तो हमारी उपेक्षा भावना कब बढ़ेगी और कब तक ये सहना पड़ेगा, ये जो अभी जो चल रहा है सिलसिला वो कब तक चालू रहेगा, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना है आपके। तो ये कार्य कारण भाव या कर्म सिद्धांत, तो ये दो प्रकार का है, एक तो है साइक्लिक और दूसरा है स्पाइरल। दोनों में भी कार्य कारण भाव है, यानी भवचक्र में भी कार्य कारण भाव है और ऊर्ध्वगामी चक्राकार मार्ग में भी कार्य कारण भाव है। लेकिन इसमें फर्क यह है कि भवचक्र का कार्य कारण भाव जो है, जिसको जो चौथी कड़ी है भवचक्र में, तो वो संस्कारित है, संस्कृत जिसको कहते हैं प्रॉपर शब्द, या संखत कहते हैं पाली में, तो ये संस्कारित है। भवचक्र का कार्य कारण भाव संस्कारित है और ऊर्ध्वगामी चक्राकार मार्ग का कारण कारण भाव जो है वो ये असंस्कारित है या असंस्कृत है, कंडीशन एंड अनकंडीशन। तो इस तरह से ये दोनों भी कार्य कारण भाव हम कल से देखने वाले हैं। पहले हम भवचक्र का कार्य कारण भाव जो है प्रतीत समुद्भात वो देखने वाले हैं और उसके बाद में दूसरा कार्य कारण भाव जो है वो स्पाइरल पाथ में है वो हम उसके बाद में देखने वाले हैं। दूसरा एक सवाल चर्चा के लिए है, यह कि तृष्णा यह दुख का मूल है, तृष्णा यह दुख का मूल है। आपके जीवन में आप तृष्णा का अनुभव कैसे करते हैं, आपके जीवन में तृष्णा का अनुभव आप कैसे करते हैं? और कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं, कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जहां हम ज्यादा तृष्णा का अनुभव करते हैं, जहां हम ज्यादा तृष्णा का अनुभव करते हैं? तो ये दो सवालों को लेकर हम आज यहां रुकने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।